ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपा सागरजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम्। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So we are on the second last day of our 2016 IYS Yatra. Are you all enjoying? How many of you have come for the very first time to Sri Rameshwaram Dham? Almost all of you. There is a very interesting connection of Rameshwaram and Nasik Panchvati. In a short while, we'll discuss about that. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he decided to come to South India, so he had planned to come alone. अकेले आने का निश्चय उन्होंने किया दक्षिण भारत की यात्रा के लिए। तो नित्यानंद प्रभु वो चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए और उन्होंने कहा कि जहां पर आप हैं वहां पर मेरा होना तो अवश्य ही अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसे एक एक कर चैतन्य महाप्रभु के सामने अपने आप को भक्त प्रस्तुत कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के सहायक बनकर जाने के लिए यहां दक्षिण भारत यात्रा की। तो एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने दी जब उन्होंने अपने इन पार्षदों के साथ आदान प्रदान किया। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें तो मैं कतई नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि एक बार मैं तुमको लेकर गया था जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी के पास तुमने मेरा सन्यास दंडा तोड़ दिया था, तोड़कर तीन भाग में कर दिया सन्यास दंडा मेरा। तो मुझे तुम पर कोई विश्वास नहीं है, तुम क्या करोगे? इसलिए नित्यानंद प्रभु को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया। तो उनके पीछे खड़े थे जगदानंद पंडित। तो जैसे नित्यानंद प्रभु रिजेक्ट हुए, जगदानंद पंडित वो सामने आए, तो फिर मैं हो लेता हूं आपके साथ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि तुम्हारे अंदर दोष ये है कि तुम हर समय मुझे इंद्रिय भोग की वस्तुएं देते रहते हो। तुम हर समय पता नहीं कहां कहां से इतने कीमती बेशकीमती तेल लेकर आते हो मेरी मालिश के लिए, गंध लेकर आते हो मुझे मेरे शरीर को सुगंधित करने के लिए, और मैं सन्यासी हूं यहां पर और तुम केवल मेरे ऐशो आराम और मेरे साथ सामग्री के लिए इकट्ठा करते रहते हो ऐसा ऐश्वर्य, ये तुम्हारा दोष। दोष निकाल रहे चैतन्य महाप्रभु, पहले नित्यानंद प्रभु में दोष निकाले, फिर उन्होंने जगदानंद पंडित इनमें दोष निकाला। फिर मुकुंद दत्त वो आए कि ठीक है मैं आपके साथ चलता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके अंदर दोष निकाले, कहा कि मैं थोड़ी भी तपस्या कर लूं तो तुम रोने लगते हो, तुमको बिल्कुल सहन नहीं होता मैं थोड़ी भी तपस्या कर लूं। तो मैं जब यात्रा में निकल रहा हूं तो कोई एडवांस पार्टी नहीं, कहां पे रहेंगे, क्या खाएंगे, कहां सोएंगे, कुछ पता नहीं। तो इतनी मेरी तपस्या होगी तुम तो पूरे दिन भर रोते रहोगे। रिजेक्ट, मुकुंद दत्त रिजेक्ट कर दिए गए। फाइनली दामोदर पंडित वो आए। दामोदर पंडित ने कहा कि देखो मैं हो लेता हूं आपके साथ, मुझ में कोई दोष मत निकालना। तो चैतन्य महाप्रभु कहे क्यों न निकालूं जब है। और दामोदर पंडित इनका दोष क्या था? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम हर समय जैसे कि सेल्फ अपॉइंटेड गुरु हो मेरे, हर समय ये करो ऐसा करो ऐसा करो, ये नहीं करना चाहिए, यहां नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, हर बार मुझे टोकते रहते हो टोकते रहते हो। ये दोष उनके अंदर निकाला, रिजेक्ट कर दिया। चारों को उनके दोष बता बता के रिजेक्ट किया। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब इस घटना को प्रस्तुत करते हैं चैतन्य चरितामृत में, व्हेन ही इज प्रेजेंटिंग दिस, तो वो चैतन्य महाप्रभु का एक ऐसा गुण इसमें उबार कर दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु वॉज फाइंडिंग फॉल्ट्स इन नित्यानंद प्रभु in Jagadananda Pandit, in Mukunda Datta, in Damodar Pandit, out of love. This was a unique expression of love of Chaitanya Mahaprabhu by finding faults. अब हम कितना सुनते हैं वैष्णव अपराध, दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए. गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में कितना इसके ऊपर जोर दिया जाता है, डोंट बिकम अ फॉल्ट फाइंडर. यार चैतन्य महाप्रभु वॉज बिकम अ फॉल्ट फाइंडर. बट कृष्णदास कविराज गोस्वामी सेज दैट ही वॉज इन वन सेंस यूजिंग कैमुत्य न्याय. अब एक है कि जब कोई फॉल्ट्स देखता है वो ढूंढ ढूंढ कर, कभी नहीं भी होते हैं फॉल्ट्स तो ढूंढ ढूंढ कर ईर्ष्या के कारण, ज्यादातर कलयुग में ईर्ष्या के कारण व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के दोष देखता रहता है, दोष दृष्टि में रहता है. एक बार एक अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया में आया और उसको गाइड टूर करा रहा है, सब जो मॉन्यूमेंट्स है इंडिया के, टूरिस्ट स्पॉट्स है, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सब टूर कराकर दिखा रहा है. तो सबसे पहले ताजमहल, ताजमहल दिखाया. तो ये पूछता है हाउ मच टाइम यू इंडियंस टुक टू मेक दिस ताजमहल. गाइड ने बोला इट टुक 19 ईयर्स. वी अमेरिकन्स वुड हैव डन इन 2 ईयर्स, यू इंडियंस आर सो लेजी. तो इसको बहुत ठेस पहुंची, अरे ये हम अजूबों में से एक है और ये कह रहा है इस प्रकार से, कोई गुणगान नहीं कर रहा है, इसमें दोष दृष्टि देख रहा है. फिर लाल किला दिखाया दिल्ली का, तो पूछा हाउ मच टाइम दिस रेड फोर्ट वॉज बिल्ट इन. तो गाइड कहता है इट टुक 17 ईयर्स. इफ वी अमेरिकन्स वुड हैव डिसाइडेड टू मेक अ फोर्ट लाइक दिस इन 1 ईयर, वी वुड हैव मेड इन 1 ईयर. अब इसे सहन नहीं हो रहा था, इस गाइड से असहनीय हो रहा था ये. कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पास ले गया. फिर से उसने वही क्वेश्चन पूछा, नाउ टेल मी हाउ मच टाइम दिस थिंग, दिस मॉन्यूमेंट यू गाइज टुक. गाइड बोलता है आई डोंट नो, यस्टरडे इट वॉज नॉट हियर. उसकी बोलती बंद. तो दोष दृष्टि, जब हम चौपाटी में यूथ प्रीचिंग करते थे तो एक स्टूडेंट, ये होता ना एक जो उनको लगता है कि ये एक अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है, अनआंसरेबल क्वेश्चन है, व्हाई डिड जीवा फॉल फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. यदि हम भगवान कृष्ण के साथ थे तो हम भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति और ऐसा दिव्य उनका धाम छोड़कर यहां पर क्यों आए, कैसे आए. तो उसको अलग अलग प्रीचर्स ने अलग अलग तरीके से आंसर देने की कोशिश करी, कि लॉजिक से, रीजनिंग से, प्रैक्टिकलिटी, सब कुछ, कभी संतुष्ट नहीं हुआ. फिर हमारा चौपाटी का एक आई कैंप लगता है बरसाना में, तो बरसाने के आई कैंप में ये गया और वहां पर उसने जब वो ब्रज भक्ति देखी और जो सेवा भाव देखा वहां से लौटने के बाद वो कहता है मुझे वो प्रश्न भी नहीं है और मुझे उस प्रश्न का उत्तर भी नहीं चाहिए. कौन सा? व्हाई डिड वी फॉल फ्रॉम स्पिरिचुअल. पूरा ट्रांसफॉर्म्ड. और वो राधे 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 करने लगा. कहां से कहां पहुंचा? व्हाई डिड वी फॉल फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से राधे 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 राधे. क्योंकि उसने बरसाना में देखा कि वो वहां पर गया था ये देखने के लिए कि ये लोग जो इतना वृंदावन 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 करते रहते हैं अवश्य ही एग्जैजरेटेड होगा. ये उस दोष दृष्टि में गया था वो. और राधा रानी की कृपा, सोचो बरसाना राधा रानी का गांव है वो, राधा रानी की कृपा ऐसी हुई कि वाई डिड वी फॉल फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ये सब तो कुछ नहीं, ही फेल एट द फीट ऑफ राधा रानी. मैं जर्मनी में था कुछ वर्ष पहले, तो वहां पर एक सुंदर नरसिंह मंदिर है, लक्ष्मी नरसिंह का मंदिर, फार्म है एक बहुत सुंदर जर्मनी में. तो वहां पर नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम लोग थे, तो एक डिवोटी जर्मन प्रसाद लेते समय मैंने उनको पूछा हाउ डिड यू कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्होंने अपनी बताई. तो उन्होंने दिखाया माताजी साइड में, बोले यू सी दैट लेडी इन दैट ग्रीन साड़ी, शी इज माई वाइफ. सो बिफोर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस वी बोथ वर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. बहुत इंटरेस्टिंग है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्पेलिंग, इसकी कभी आपने गौर की इसके ऊपर? लास्ट में एंड है सब में. दोनों के लास्ट में क्या है? एंड. समझ जाओ. तो ये डिवोटी, जर्मन डिवोटी, इन्होंने कहा कि हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और ये इस्कॉन के डिवोटीज के संपर्क में आई, भगवत गीता इसे प्राप्त हुई और इसने भगवत गीता न केवल पढ़ना बल्कि भगवत गीता के ऊपर अपना जीवन जीना शुरू कर दिया. उसने सारे चार नियम जप इत्यादि सब कुछ. अब मैं टेंशन में कि भाई मैंने तो अपना इतना फ्यूचर प्लान किया था इसके साथ, इसने तो दगा दे दिया मुझे. ये तो जैसे वो धृतराष्ट्र ने बहुत कुछ प्लान किया था ना, भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को जो सुनाई, धृतराष्ट्र तो बहुत खुश हो रहा था कि अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया है, अभी तो मतलब वो ऐसे ही दे देगा मेरे बेटे को हस्तिनापुर का राज्य. तो ऐसे इनको लगा कि ये भगवान कृष्ण जो भी हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे से दूर क्यों ले जा रहे हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, अरे इनके पास तो इतनी है. सो दिस डिवोटी ही परचेज्ड हिज ओन कॉपी ऑफ भगवद गीता. यू नो व्हाई? जस्ट टू फाइंड फॉल्ट्स सो दैट ही कैन शो टू दिस गर्लफ्रेंड कि देख ये गलती है इसके अंदर, तुझे समझ में नहीं आई, यहां पर ये प्रॉब्लम है, ये सब कुछ हमारे रीति रिवाज के अनुसार नहीं है, हमारे जर्मन माइंडसेट के अनुसार ये सब कुछ मनगढ़ंत है. ऐसे प्लान करके भगवत गीता खरीदी पर्सनल कॉपी और एकदम स्क्रूटिनाइजिंगली भगवत गीता पढ़ी अपनी एज इट इज. आप कल्पना कर सकते हैं क्या हुआ होगा उसका. गर्लफ्रेंड को माताजी बुलाने लग गया. तो यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने छल का इस्तेमाल किया, परंतु उस छल में चैतन्य महाप्रभु का प्रगाढ़ प्रेम अपने इन पार्षदों के लिए जो था वो प्रकट होकर दिख रहा था, प्रगाढ़ प्रेम। तो ये शुरुआत चैतन्य महाप्रभु की थी दक्षिण भारत यात्रा की। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ दक्षिण भारत यात्रा। इसके पश्चात जब उनको अनुमति मिली तो उन्होंने फिर एक ऐसे सेवक को चैतन्य महाप्रभु के साथ भेजा जो कि ज्यादा फेमस नहीं था, नॉर्मल सा, ऐसे इस्कॉन में कहते हैं ना न्यू भक्त प्रोग्राम वाला तो न्यू भक्त प्रोग्राम वीटीए वाला ऐसे टाइप का भीष्मा ग्रुप वाला काल कृष्णदास, काल कृष्णदास को भेजा। अब ये अलग बात है कि काल कृष्णदास वो किसी और दिशा में चले गए, कुछ और उन्होंने अपना प्रोग्राम बना लिया यात्रा के दौरान, साउथ इंडिया यात्रा के दौरान उन्होंने भी एक अलग से यात्रा निकाल ली अपनी। तो हम उस यात्रा में नहीं जाएंगे, हम नहीं चाहते कि आप लोग भी काल कृष्णदास के संप्रदाय में जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर वहां से गए अलारनाथ। अब ये अलारनाथ है क्या, इसका एक्चुअल प्रोनंसिएशन है अलवरनाथ। जैसे हम श्रीरंगम से आए तो श्रीरंगम में ये सारे जो इतने अलवर्स हुए, जो हम लोग आचार्य जिनको बोलते हैं हमारे गुरु परंपरा में, वैसे श्री संप्रदाय में तो वो है अलवरनाथ। अलवरनाथ का फिर प्रोनाउंसिएशन हुआ अलारनाथ। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी यात्रा प्रारंभ की वहां से दक्षिण भारत की। तो अलग अलग दक्षिण भारत के तीर्थ क्षेत्रों में चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया। हम लोग यहां पर रामेश्वरम में हैं। तो यहां रामेश्वरम का कनेक्शन नासिक पंचवटी से है, थोड़ा इनडायरेक्टली। और हम लोग परसों जाने वाले हैं मदुरई, तो रामेश्वरम का कनेक्शन मदुरई से भी है। आज आप लोगों को ये कथा हुई थी क्या, रामदास विप्र? रामदास विप्र की कथा नहीं हुई ना आज? तो चैतन्य महाप्रभु जब मदुरई गए, परसों हम लोग जाने वाले मदुरई, तो मदुरई को बताया गया है चैतन्य चरितामृत में सदर्न मथुरा। दक्षिण क्षेत्र में मथुरा अगर है कहीं पे तो वो है मदुरई। तो वहां पर जो फेमस मीनाक्षी का मंदिर, तो मीनाक्षी के मंदिर का दर्शन करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु वहां पर जब स्नान के लिए गए, तीर्थ स्थान के लिए गए, तो एक ब्राह्मण, इनका नाम रामदास विप्र, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाया। सोचिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान युगावतार को अपने घर में प्रसाद के लिए इन्होंने न्योता दिया और वो एग्री हो गए। आप कल्पना कर सकते हैं, यदि आप रामदास विप्र के जगह पर होते और युगावतार आपके घर में प्रसाद के लिए आने वाले हैं तो आप क्या अरेंजमेंट्स करते? दूधी भोपला बनाते? तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं लंच के समय और कुछ भी नहीं बनाया हुआ है। तो तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, भाई तुमने मेरे को बुलाया था प्रसाद के लिए, ये प्रसाद का समय है, तुमने कुछ बनाया क्यों नहीं? तो रामदास विप्र कहते हैं कि कैसे बनाऊं, लक्ष्मण अभी तक लकड़ी लेकर नहीं आए हैं। लक्ष्मण लकड़ी लेकर नहीं आए? लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण रामायण के लक्ष्मण? वो रोज रामायण पढ़ा करते थे, रामदास विप्र रोज रामायण पढ़ा करते थे। अब देखो उनका एब्जॉर्प्शन रामायण स्टडी में और हियरिंग में उनका एब्जॉर्प्शन, ये लेसन हम रामदास विप्र से सीखेंगे कि उन्होंने रामायण में पढ़ा कि लक्ष्मण लकड़ी लेकर आया करते थे और सीता माता वो कुकिंग करती थी तीनों के लिए। तो माता सीता का तो अपहरण हो गया है, लक्ष्मण लकड़ी लेकर नहीं आए, ये सब पढ़ा तो वो अपने होशो हवास खो बैठे थे रामदास विप्र। ही वॉज नॉट इन द राइट फ्रेम टू डू एनीथिंग। चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे कि हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, श्रीरंगम में चैतन्य महाप्रभु ने क्या डिटेक्ट किया? उस अनपढ़ ब्राह्मण की भक्ति, शुद्ध भक्ति। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने रामदास विप्र, मदुरई के रामदास विप्र के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इस प्रकार का रामायण का श्रवण कि वो रामायण की लीला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अपने आप को एक किरदार मान रहे हैं रामायण का। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाने की कोशिश की, और ऐसा नहीं है कि वो खुद अपने लिए कुछ बनाकर खा ली और चैतन्य महाप्रभु को नहीं खिलाना चाहते थे इसलिए ये बहाने दे रहे थे कि हाँ कोई इंप्रेस करने के लिए, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे। ही वॉज नॉट ट्राइंग टू इंप्रेस चैतन्य महाप्रभु, ही वॉज वेरी सीरियस। मैं इतना विकल हो रहा हूं कि सीता को उस दुष्ट रावण ने स्पर्श किया, फास्टिंग में चले गए पूरा वो, और चैतन्य महाप्रभु को भी फास्टिंग करा रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के लिए फीस्टिंग हो रहा था। क्या फीस्टिंग हो रहा था? इस रामदास विप्र का जो एब्जॉर्प्शन किसके अंदर? हियरिंग, अध्ययन में और श्रवण में जो एब्जॉर्प्शन देखा चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए, उनका हृदय द्रवित हो गया। तो हम थोड़ा इस पर अब चर्चा करते हैं, एब्जॉर्प्शन इन हियरिंग। जो चैंटिंग अगर सिक्के का एक पहलू है युग धर्म, तो सिक्के का दूसरा पहलू वो है श्रवण। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 4 स्टेजेस बताए श्रवण के, 4 स्टेजेस बताए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेजेस हैं ये। सबसे पहला स्टेज श्रवण दशा, जैसे कि इस समय आप लोगों की दशा क्या हो रही है, श्रवण दशा। When we hear the pastimes of the Supreme Lord, the instructions of the Supreme Lord, अब देखिए ये श्रवण की जो विधि है इसमें हम कान तो खुले ही होते हैं, कोई हमें कान खोलने का प्रयास नहीं करना पड़ता। चैंटिंग के अंदर फिर भी वो बीड्स को घुमाने का प्रयास करना पड़ता है, उच्चारण कर जीभ वो हिलानी पड़ती है, सही उच्चारण करना पड़ता है, जगह रहना पड़ता है। हाँ श्रवण में भी जगह रहना पड़ता है, परंतु आसान क्या है? दोनों में शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आसान क्या है? श्रवण आसान है। इसलिए नवदा भक्ति में सबसे पहले श्रवण बताया गया है। अब ये जो श्रवण है, इस श्रवण में अवरोध क्या आता है? सबसे पहला अवरोध श्रवण में आता है वो है विक्षेप। जैसे ही हम एक बहुत ही ये अजीबो गरीब हमारे अंदर सिस्टम है, कलयुगी शरीर के अंदर या माइंड के अंदर ये सिस्टम है कलयुग के प्रकोप के वजह से, कि जैसे ही आप माला हाथ में लेते हो या श्रवण के लिए बैठते हो, पता नहीं क्या कौन सा बटन दबता है कि ये जो माइंड है वो उस समय तुरंत रफू चक्कर होता है। रफू चक्कर, ये शब्द सुना है? रफू चक्कर मतलब गायब। तो जैसे ही माइंड को समझ में आता है, अच्छा तू अभी लेक्चर में बैठने वाला है, और वो भी ये हरे कृष्ण वालों के लेक्चर में, जो कि एक बार शुरू करते हैं तो पता नहीं कब खत्म करते हैं लोग। इनके लेक्चर होते हैं कैसे? एरोफ्लोट एयरलाइंस, एरोफ्लोट एयरलाइंस में हम गए थे, तो एरोफ्लोट एयरलाइंस में एयर होस्टेस कहती है वी गारंटी टेक ऑफ। सही में ऐसे वो अनाउंसमेंट करते हैं, वी गारंटी टेक ऑफ, बाकी खुदा हवाले आप लोग। तो वैसे ही इस्कॉन के प्रवक्ता एरोफ्लोट एयरलाइंस जो होते हैं, वी गारंटी बिगनिंग। तो विक्षेप, तुरंत माइंड जो है वो कहता है कि तू बैठा रहे, डेढ़ घंटे में घूम के आता हूं, जहां जहां मुझे जाना है घूम। जैसे ही चैंटिंग माला हाथ में ली, माइंड तुरंत यहां वहां घूमना। और कभी भी ये माइंड इतना ज्यादा भ्रमण नहीं करता जितना ज्यादा जब शरीर को आप श्रवण दशा में लगाते हैं तब। इस समय भी, और क्या है, इतने सालों का प्रचार करने के पश्चात इस सीट पर बैठकर समझ में आ जाता है कि कौन अपने माइंड के साथ बैठा है और कौन अकेला बैठा है। कई बार हम ऑडियंस में देखते हैं कि कई ऑडियंस में ऐसे होते हैं जो टकटकी लगा के देखते रहते हैं मुझे, और शुरुआत में मेरे को लगता था क्या बड़े ध्यान से सुन रहा है यार। उनको नींद भी नहीं आ रही होती, ऐसे देखते रहते हैं। और कई बार मुझे लगता है कि कहीं लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद समझ में आ गया कि भैया उसकी आंखें वो यहां पर जमी हुई हैं, मन तो और कहीं पर सैर सपाटे कर रहा है वो। तो श्रवण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्रवण, उसके अंदर कुछ तथ्य आएगा जब सेकेंड लेवल पर हम जाएंगे। और सेकेंड लेवल क्या है? मनन। श्रवण के पश्चात मनन। मनन अर्थात आपने देखा होगा गाय या ऊंट, हर समय मुंह चलता रहता है उनका, मुंह चलता रहता है हर समय। क्या करते हैं वो लोग? उसको इंग्लिश में कहते हैं रूमिनेटिंग। हाँ हाँ, अभी मेरी दशा ऐसी हो गई जैसे कई बार मैं पूछ लेता हूँ ना ऑडियंस को, समझ में आया? हाँ समझ ल, मतलब वो डर के मारे बोल देते हैं कि समझ गया, नहीं तो वापस से समझाना शुरू करेगा, पहले लेट हो रहा है, डिनर अभी खाया नहीं है। हाँ जो भी आप बोले मैं समझ गया, उसको बोलते हैं मनन। तो मनन का अर्थ है श्रवण करने के पश्चात। सबसे पहले तो याद कितना रहता है, मनन करने के लिए याद रहना चाहिए, तो याद कितना रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है श्रवण करते समय। इसलिए मैं बोलता हूं, बहुत बार मैं ऑडियंस में लेक्चर के पश्चात ऑडियंस आकर बोलते हैं, प्रभु जी क्या एकदम आपके हर लेक्चर एकदम नए होते हैं, नए लगते हैं एकदम आपके हर लेक्चर। अब घुमा फिरा के वही एग्जाम्पल्स और स्टोरी हम सुनाते रहते हैं। फायदा कलयुग में क्या है प्रीचर्स को, कि ऑडियंस वो पुराना वाला भूल जाते हैं, तो उनको लगता है हर लेक्चर एकदम नया सुना रहे हैं प्रभु जी। तो मनन, रुमिनेटिंग, मनन के पश्चात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहते हैं निधि ध्यासनम। डरिए मत, बहुत सिंपल इसका अर्थ है, प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होगा। निधि ध्यासनम का अर्थ है एप्लीकेशन, श्रवण मनन उसके पश्चात निधि ध्यासनम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितना हो रहा है। अच्छा, जो फोर्थ चक्रवर्ती ठाकुर ने मुद्दा या श्रवण की परिपूर्णता, ये फोर्थ मुझे सबसे अच्छा लगा। फोर्थ है वंदनम, और ये वंदनम का अर्थ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है कि जो भी श्रवण किया उसका मनन किया, उसको अप्लाई किया, ये सारी चीजें फोर्थ उसको कंप्लीट करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं राधा मदन गोपाल के सामने जाकर, प्रार्थना क्या होनी चाहिए कि भगवान जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत हो ये श्रवण की, तब मुझे ये याद दिलाना। इसे बोलते हैं वंदनम। When I need the most, please you make sure that you make me remember whatever I have heard when I need it the most. This is called Vandanam. I like this the most. जैसे कर्ण, कर्ण को क्या श्राप मिला था कि जब तुझे इस धनुर्विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उस समय तू भूल जाएगा। परशुराम ने क्या श्राप दिया था कर्ण को, यह श्राप दिया। तो सोचो कि यदि उसको आप ट्रांसलेट करो एज अ स्टूडेंट, कि अगर आपके कोई प्रोफेसर परशुराम की तरह बन जाए और आपको कहें कि तू कितना भी पढ़ ले, तू कितनी भी पोथियां इंजीनियरिंग की पढ़ ले, कितना भी रट्टा मार ले, जब एग्जाम के समय जब जरूरत पड़ेगी तुझे उस समय तू भूलेगा। खैर आजकल के प्रोफेसर श्राप भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसके कनेक्शन में, रामेश्वरम के कनेक्शन में है ये इंसिडेंट। हम लोग जब फर्स्ट रामेश्वरम की यात्रा में आए थे 1994, वो एक यादगार यात्रा थी, साउथ इंडिया यात्रा, फर्स्ट साउथ इंडिया यात्रा फ्रॉम इस्कॉन चौपाटी। जैसे हम लोग यहां पर कुछ कितने हैं, तकरीबन 200 होंगे, 200 से भी कम है, तो 250 उस समय कॉन्ग्रीगेशन सब एडवांस पार्टी नॉन एडवांस पार्टी सब मिलाकर 250 थे। तो यहां रामेश्वरम फर्स्ट टाइम, सब लोग फर्स्ट टाइम रामेश्वरम, इंक्लूडिंग राधानाथ महाराज फर्स्ट टाइम रामेश्वरम आए। और ये जगह पर तो आपको हम नहीं ले जा पा रहे हैं, ये जगह मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ये ऐसी जगह है सेतु बंद, जहां से रामचंद्र जी ने सेतु बनाया वानर सेना की सहायता से, धनुष कोड़ी बोलते हैं उसको। तो वहां की ये घटना हुई। तो सब लोग पूरी यात्रा अब वहां पर, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में मेंशन है कि धनुष कोड़ी सेतु बंद में यदि जाकर कोई डुबकी लगा देता है तो पुनः जन्म नहीं होता उसका। अब मुझे नहीं पता कि इसका तात्पर्य क्या था इस हरी बोल का। तो हमने लोकल एक गाइड किया था यहां पर, तो अक्सर यहां के गाइड को बाद में हमने नाम दिया, उसको प्रेफिक्स किया मिस गाइड। दैट डजंट मीन गाइड विद अ मिस, बट वन हु मिस गाइड्स। तो ये बंदे ने एक ऐसे स्थान पर जाकर सबको कहा यह है सेतु बंद, यह है धनुषकोड़ी। तो महाराज उतरे, सब लोग उतर गए, सब लोग मतलब जो पढ़े थे चैतन्य चरितामृत में कि यही वो स्थान है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं द मोस्ट होली प्लेस वेर यू टेक बाथ एंड यू विल नेवर बी टेकिंग बर्थ अगेन। तो सब लोग एकदम अभी उस भाव में, महाराज ने देखा वेट मिनट, ये वो स्थान नहीं लग रहा है, कुछ तो महाराज को ठीक नहीं लगा, गड़बड़ है ये। तो महाराज ने अंदाजा लगाया कि वो तो टिप होना चाहिए, मैप मंगाया, रामेश्वरम का मैप मंगाया। तो मैप के अंदर समझ में आ रहा है कि वो ऐसे प्रोट्रूडिंग है, इंडिया के मैप से थोड़ा सा ऐसे रामेश्वरम बाहर आया हुआ है, स्पेशली ये सेतु बंद। तो महाराज ने कहा कि ये तो टिप नहीं लग रहा है, टिप मतलब आप जहां पर खड़े हो तीनों ओर समंदर होना चाहिए। तो महाराज बोले इस गाइड को जो भी पैसे देके इसको रफा दफा करो, आई विल बिकम योर गाइड। और चलना शुरू किया, कौन सी दिशा में, वो समंदर जहां पर एंड हो रहा है उस दिशा में चलना शुरू किया। अभी हम लोग भी सब पीछे पीछे, कुछ पता नहीं कहां जा रहे हैं, महाराज ले जा रहे हैं, कीर्तन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, डेढ़ घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, दोनों ओर और इतना सुंदर समंदर, एक्वा ग्रीन कलर क्रिस्टल। मेरा तो इतना मन कर रहा था बीच में छलांग लगा के, तो बीच बीच में हम लोग छलांग लगा के आ भी जाते थे। तो चलते गए चलते गए चलते गए और फिर फाइनली वो टिप पर पहुंचे, और वो टिप के आगे कोई लैंडमार्क नहीं, देयर वाज नो लैंड एट ऑल आफ्टर दैट, इट वाज ओनली पानी ही पानी, वाटर एंड वाटर एवरीवेयर, सिंपली वाटर एवरीवेयर। तो अब वो टिप, और वहां पर महाराज वो टिप पे खड़े हुए सब जगह पर, और किस तरीके का पानी था, तीन ओशंस वहां पर मिलते हैं, एम आई राइट, थ्री ओशंस मीट, अपना अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। तो ऐसे तीन वेव्स आपको दिखते हैं यहां से, बे ऑफ बंगाल वहां का उस ओशन का वेव्स है ना, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ऐसे तीन वेव्स मिलते हैं। ओ, ऐसा सीनिक स्पॉट हो, और वहां पर कोई बंदा नहीं, कोई बंदे की जात नहीं, कुछ नहीं, सब नेचुरल, एवरीथिंग इज नेचुरल. आई डोंट नो, स्टिल इट्स लाइक दैट. हाँ, सो दैट वॉज यूनिक. एवरीथिंग, कोई वहां पर नहीं, इतना क्लीन सब कुछ. अब वो स्पॉट के ऊपर हम लोग सब अब रेडी थे, क्योंकि 2 घंटा चल रहे थे, तो इतना गर्मी भी हो गया था. अभी बस कूदेंगे, स्नान करेंगे, दोनों रिफ्रेशिंग होगा, स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट होगा, सब कुछ हो जाएगा. तो सब लोग कूद पड़े अंदर. अब ये हमें पता नहीं था कि वो जहां पर ये 3 समंदर मिलते हैं, तो तीनों के अलग अलग प्रकार के अंडरकरंट्स होते हैं, जो आपस में मिलके एक बहुत ही यूनिक बवंडर बनाते हैं. बवंडर समझते हैं ना आप लोग, वर्लपूल. तो एक हमारे उस समय ब्रह्मचारी बद्री नारायण प्रभु, अच्छे स्विमर वो, तो वो तो अंदर चले गए स्विमिंग करते करते, और समंदर उसके अंदर. आप लोग आज समंदर गए थे, मतलब थोड़ा अंदर गए थे कि ऐसे ही बाल्टी लेके? तो समंदर में एक पॉइंट आता है, समंदर आपको तट की ओर फेंकता है, लेकिन एक पॉइंट समंदर में आता है जब समंदर आपको अंदर खींचता है. दैट्स कॉल्ड द अंडरकरंट. और ओशन में, ओशन के जो टाइड्स हैं, ओशन टाइड्स में लो टाइड इज डेंजरस, मोर डेंजरस देन हाई टाइड. अक्सर हमको लगता है हाई टाइड में नहीं जाना चाहिए, बट हाई टाइड आपको फेंकता रहेगा, शोर के ओर फेंकता रहेगा. लो टाइड सक्स यू इन. तो वो लो टाइड था. और कोस्ट गार्ड्स, जो वहां के एरिया के कोस्ट गार्ड्स, उनको समझ में आ गया कि ये ग्रुप इस दिशा में गया है. वो लोग सब पीछे पीछे, क्योंकि कुछ वेदर रिपोर्ट ऐसा था कि डेंजरस वाटर्स में हम लोग ने प्रवेश कर दिया था, वेदर रिपोर्ट के अनुसार. तो ये बद्री नारायण प्रभु ये एक ऐसे पॉइंट पे चले गए, हाथ पैर मार रहे हैं, आगे ही नहीं आ रहे, क्योंकि वो ओशन अंदर खींच रहा है, अंदर खींच रहा है, अंदर खींच रहा है. मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना सेतु के लंका पहुंचने वाले हैं. तो समझ में आया, महाराज को समझ में आया. हम लोग तो अभी इतने सारे सब डिवोटीज अंदर स्नान कर रहे हैं, तो सब लोग वो मजा मस्ती मूड में होते हैं, तो कौन ध्यान देता है कि कौन कौन सी स्थिति में है, कौन से स्टेट में स्नान करने के. लेकिन महाराज ने देख लिया कि ये गड़बड़ स्थिति में पहुंच गया ये. तो महाराज ने तुरंत वहां पर एक अमेरिकन, उनका नाम कृष्ण बलराम प्रभु, जो कि प्रोफेशनल वो लाइफ सेवर, जिसको बोलते हैं लाइफ गार्ड वो थे, तो उनको बुलाया. फिर महाराज ने ह्यूमन चेन बनाया. तो ह्यूमन चेन मतलब एक एक सब लोग पकड़ो, और फिर ये कृष्ण बलराम प्रभु और महाराज वो सबसे आगे जाके फिर उनको रेस्क्यू किया. और महाराज चिल्लाए, नाउ पुल एवरीवन, सब लोग फिर खींचे, फाइनली इनको बचाया. अच्छा, केवल इतना ही नहीं, बहुत से दूसरे डिवोटीज वो देख रहे हैं, यहां तक घुटनों तक पानी है. हमारे सुदामा प्रभु उनको स्विमिंग वगैरह नहीं आता है, तो वो रिस्क नहीं ले रहे थे. वो अपना गायत्री करने के लिए थोड़ा गए, नेक्स्ट स्टेप तो वहां पे भक्ति रसामर्थ महाराज, वो बगल में उन्होंने देखा कि ये गायत्री इसने शुरू किया, ये गायब कहां हो गया. ये सौबरी मुनि वाला गायत्री कर रहा है क्या अंदर जाके. तो अचानक वो सुदामा प्रभु गायब. तो तुरंत उनको बुलाया, भैया उसको ढूंढो, कहां गए वो. तो उनको रेस्क्यू किया. फिर एक जेजे का स्टूडेंट, तो वो भी इसी दशा में अटका हुआ, तो वो मतलब ऐसे स्टेज पे और वो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और वो ऑलमोस्ट वो पानी के अंदर चला गया था और वो पानी उसके ऊपर जो मूवमेंट हो रहा था उससे ये कृष्ण बलराम प्रभु को समझ में आया कि इस ये जो मूवमेंट हो रहा है पानी का, इसके नीचे कोई गया है अभी अभी। इमेजिन करो, वो गए उसको रेस्क्यू किया और ये डिवोटी बाद में अपना रियलाइजेशन, सब लोग अभी पूछ रहे हैं क्या क्या तुम्हारा रियलाइजेशन क्या है, रियलाइजेशन क्या है? तो ये डिवोटी अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं कि मैंने मृत्यु को इतने निकट देखा और उस समय मैं आतुर भाव से जितना इंटेंसिटी से हो सके मैं प्रार्थना कर रहा था कि भगवान अगर यही मेरा अंतिम क्षण है तो जितने मैंने चैंटिंग करी है, जितने मैंने श्रवण करे हैं, हम लोग क्या पॉइंट पे हैं, वंदनम, तो मुझे ये याद आया। तो फिर उसने प्रॉमिस किया कि आप अगर मुझे बचा दोगे तो मैं इसी इंटेंसिटी से रोज चैंटिंग करूंगा, इसी इंटेंसिटी से मैं आपको याद करूंगा, मैं श्रवण करूंगा, मनन करूंगा, निधि ध्यासनम सब कुछ। और फिर इसको रेस्क्यू करा दिया गया। फिर बाद में जब वापस ये बंबई गया, जैसे होता है कलयुग मन, वो धीरे धीरे सब कुछ भूल गया और फिर उसने वो चैंटिंग भी छोड़ दी, मंदिर भी आना बंद कर दिया। फिर बहुत सालों बाद वो हमारे डिवोटी से मिला तो डिवोटी पूछा, अरे वो क्या धनुषकोड़ी सेतु बंद में तुमने इतने इतने वो दावे दिए थे, तुम ये करोगे वो करोगे, क्या हुआ? तो उसने कहा अभी क्या है, माया देवी, हाँ, वो भी तो भगवान की शक्ति है। तो वो बोलता है कि मैंने मेरे बेटे का नाम गौरांग रखा है, तो फिर वो चैंटिंग होता रहता है मेरा दिन में। यहां पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये जो फोर्थ चक्रवर्ती पाद ने श्रवण के विषय में कहा है वंदनम, दैट वी शुड प्रे वेर एवर वी गो, वी शुड प्रे, द फोर्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट ओ माई डियर लॉर्ड प्लीज हेल्प मी रिमेंबर ऑल दैट वॉट आई हैव हर्ड अबाउट यू, your instructions, your pastimes, when I need it the most. This is called absorption in hearing. तो रामदास विप्र उनका hearing इस प्रकार का, चैतन्य महाप्रभु इतना impress हो गए और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कन्विंस करने की कोशिश करी कि अरे वो जो सीता रावण, हाँ तो कनेक्शन क्या है अभी कि सीता का अपहरण कहां हुआ था, हमारे नासिक पंचवटी में। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि वो माया सीता थी, जो असली सीता थी रावण उसको छू भी नहीं पाया, लेकिन ये कन्विंस नहीं हो पाए। रामदास विप्र फास्टिंग टिल डेथ। तो चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा बहुत उनको आश्वासन देते हुए उनका फास्टिंग तोड़वाया और फिर चैतन्य महाप्रभु रामेश्वरम आए और रामेश्वरम में चैतन्य महाप्रभु ने कुछ यहां के ब्राह्मण कथा सुना रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ऑडियंस में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं और उस कथा में कूर्म पुराण को ये कथाकार कोट कर रहा था और कूर्म पुराण के कुछ श्लोकों में मेंशन है कि वो माया सीता जो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, असली सीता को अग्नि देव ने अपने अंदर रख लिया था, समा लिया था और फिर रावण ने उस समय माया सीता का अपहरण कर ले गया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सुना इस प्रवक्ता के मुख से और वो कूर्म पुराण को कोट कर रहा है, उसके सामने ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कूर्म पुराण का। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत रामदास विप्र को याद किया मदुरई के, और महाप्रभु गए उस प्रवचन के पश्चात और उस प्रवक्ता से पूछते हैं, क्या मुझे ये मैन्युस्क्रिप्ट मिल सकती है? एक ही कॉपी उसके पास थी। चैतन्य महाप्रभु के रूप को देखकर, उनके वैभव ऐश्वर्य को देखकर उस प्रवक्ता ने उसकी ओरिजिनल कूर्म पुराण की मैन्युस्क्रिप्ट चैतन्य महाप्रभु को दे दी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसकी कॉपी बनवाई, और फिर कॉपी बनवाकर एक कॉपी, नई वाली कॉपी, वो ओरिजिनल ले जाना चाहते थे मदुरई रामदास विप्र को दिखाने के लिए कि ओरिजिनल कूर्म पुराण में पढ़ लो तो तुम इतनी चिंता में नहीं रहोगे। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है, मैं जब आज चैतन्य चरितामृत में ये प्रसंग पढ़ रहा था तो मैंने सोचा दिस इज दी ओरिजिनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन डन। ये कौन सा महीना चल रहा है? मैराथन का महीना चल रहा है। द ओरिजिनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन वॉज डन बाय चैतन्य महाप्रभु कि ये कूर्म पुराण ऑल द वे मदुरई से हो चुके हो आ गए थे यहां पर, उनका ट्रिप मदुरई का हो चुका था। फ्रॉम हियर ही अगेन वेंट ऑल द वे टू मदुरई जस्ट फॉर रामदास विप्र, टू शो रामदास विप्र दैट दिस इज व्हाट आई वॉज टेलिंग यू, इट इज ऑथेंटिक इन द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कूर्म पुराण इट इज मेंशन्ड। तो मैंने सोचा कि दिसंबर का महीना है, द ओरिजिनल बुक डिस्ट्रीब्यूटर युगावतार ही डिड इट, तो हम लोग थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ पास टाइम्स डिस्कस करते हैं। आप लोग का ये जो हरिबोल है ये इतना मरियल हरिबोल है, एक तरफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रामदास विप्र उनका हियरिंग, चैतन्य महाप्रभु युगावतार, और यहां पर जैसे मैं कहूं कि हम लोग थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन पास्ट टाइम्स डिस्कस करते हैं तो कई लोग तो उसको हॉरिबल बोल रहे हैं। हॉरिबल अब भाई देखो, हम तो यहां पे बैठ गए एरोफ्लोट एयरलाइंस, तो आपको पूरा एक्सपीरियंस दिलाएंगे रामेश्वरम का। पता नहीं वापस आपको आना होगा या ना होगा, पूरा एक्सपीरियंस दिलाएंगे कि भूख प्यास मरते हुए भी श्रवण किया है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारे राधा गोपीनाथ के एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हुआ, तो वो बस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बस में, और एक बंदा अनजान व्यक्ति वो ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर के बिहाफ पे मार्केट करने लगा। मतलब ये अनाउंसमेंट किया इन्होंने कि ये हमारे संस्थापक आचार्य, इनके द्वारा लिखी गई भगवद गीता पर आधारित ये छोटी पुस्तकें हैं, ये पूरी भगवद गीता है, ऐसे वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे थे। तो ये बंदा ये बोला, हां मैं बोलता हूं आप लोगों को खरीदनी चाहिए, आप लोगों को ये बुक आपका जीवन परिवर्तित कर देगी, ऐसे करके ऑन बिहाफ ऑफ द बुक डिस्ट्रीब्यूटर। तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर सोचने लगा, मैं तो इसको कभी देखा नहीं मंदिर में, मैं जानता भी नहीं हूं, ये अचानक ये मेरे को क्यों असिस्ट कर रहा है, चलो ठीक है अच्छी बात है। तो दोनों साइमल्टेनियसली मार्केट कर रहे हैं, उसने भी बांट दी बुक डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी बांट होने के बाद में फिर वो आया, फाइनली सब बुक्स हो गई, बस से उतरे, आया उसने बोला कि देखो मैंने अभी तुम्हारी इतनी हेल्प करी, अभी मुझे दो ना एक बुक फ्री। तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर उनको पूछता है कि मतलब तुम ठीक है तुमने मेरी हेल्प करी, लेकिन तुम ये बुक क्यों चाहते हो? तब इसने कहा, बोला कि मैं इतने सालों से आपके श्रील प्रभुपाद के बुक्स के बारे में मैंने सुना है इतने लोगों से, लेकिन मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं हुए आपकी भगवद गीता खरीदने के। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आपकी मदद करता हूं तो उसके बदले में आप मेरे को कम से कम एक फ्री में गीता दे दोगे, क्योंकि मेरी इतने सालों से पढ़ने की इच्छा है। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर हृदय पिघल गया, इन्होंने अपनी तरफ से उसको भगवद गीता भेंट में दे दी। तो ऐसे ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के किस्से हैं, और सुनना चाहेंगे? हाँ, अब जान में जा भावना पोचली। कुठली भावना? तो मैं और राधेश्याम प्रभु ये फिर 1994 की बात है, हाँ, हमारे साउथ इंडिया यात्रा के पहले। तो मैं और राधेश्याम प्रभु बॉम्बे में मरीन लाइंस का एक ब्रिज है वहां पर, वो ब्रिज के नीचे हम लोग टेबल लगाए थे। तो शाम के 8:30-9 बज गए थे, तो अभी वाइंड अप हम लोग कर रहे थे। तो एक दंपति, तो उसमें से जो पति है वो आके वो पूछता है राधेश्याम प्रभु से, आपकी संस्था में एक मंत्र है ना, आप लोग जो जप करते हो, मेरे को देंगे मंत्र? तो राधेश्याम प्रभु अभी तो अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं, उस समय उनको हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया। नहीं, पहले तो बोला उनको, तो बोला नहीं मेरे को ऐसे याद नहीं रहेगा, आप लिख के दो। तो पेपर पे इंग्लिश पे लिख दिया, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई हिंदी में लिख के दो इनको। तो मैंने हिंदी में लिखा, बोला नहीं मेरे को गुजराती आती, गुजराती में लिखो। मैं अभी ये राधेश्याम प्रभु तमिलियन है, मैं मारवाड़ी हूं, अभी गुजराती में मैं कैसे लिखूं? और उसकी पत्नी पीछे से खींच रही है, हाँ चलो चलो चलो, क्या इधर टाइम बर्बाद कर रहे हो साधुओं के साथ। तो उसने अपने पत्नी का हाथ झड़का दिया, कोई मंत्र लेने का ही है। तो मैंने बोला कि देखो भाई, मेरे को गुजराती लिखनी नहीं आती है, मैं तुमको धीरे धीरे बोलूंगा, इजी है, याद रह जाएगा तुमको, बोलो हरे कृष्णा ऐसे करके मैंने उसको। तो उसने रिपीट किया, गलत किया रिपीट, बोला इतना बड़ा ये शादीशुदा आदमी है, इसको एक महामंत्र याद नहीं हो रहा है, ये उसको कैसे संभालता है? तो मैं पूरा कंफ्यूज हो गया कि इसको अभी देखो कैसे कई चीजें आपकी समझ के बाहर होती हैं। अभी आपने कभी ऐसे बंदे को आप मिले हैं कि जो महामंत्र आप 4 बार 5 बार उसको याद ही नहीं होता है, फिर भी गलत गलत बोलता है, कभी राम एक निकाल देता है, कभी ऐड कर देता है, कभी हरे ऐड कर देता है, कभी निकाल देता है। तो अब वो इतना डेस्परेट, उसको चाहिए। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि अब क्या करे, गुजराती में तो लिख नहीं पा रहा हूं मैं। तो एक दूसरा बंदा जो क्रॉस कर रहा था ऐसे ही पासर बाय, वो आया, वो मेरी तरफ आया, बोलता है आपको गुजराती में कुछ लिखना है क्या? मैं लिखता हूं। मैं उसको ऊपर से नीचे देख रहा हूं, ये अचानक ये कहां से आया? तो उसने गुजराती में, मैंने उसको बोला, उसने गुजराती में पेपर पर लिख दिया और ये चला गया लेकर, ये गुजराती जो दंपति लोग चला गया, वो रुक गया अभी जिसने लिखा था, वो रुक गया और वो बोलता है ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या है महामंत्र जो मेरे से लिखवाया आपने? तो मैंने फिर उसको बताया, 10-15 मिनट उसको प्रीचिंग किया। वो अभी इनिशिएटेड डिवोटी है चौपाटी कांग्रेगेशन का। वो जो महामंत्र लिखकर लेकर गया वो पता नहीं कहां पहुंचा होगा। अच्छा, ये हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन नेक्टर का सबसे लेटेस्ट है। तो अगर आपका मन यहां वहां कहीं गया होगा समंदर में तो ले आना उसको वापस। जिनीवा, जिनीवा सुना है ना आपने, ये देश कौन से कंट्री में है? कंट्री है स्विट्जरलैंड। हाँ, स्विट्जरलैंड में जिनीवा। तो हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूटर, उसने देखा जिनीवा में एक सेलिब्रिटी का बड़ा बंगला, और इस सेलिब्रिटी के बड़े बंगले, उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं यहां पर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो उसने दस्तक दिया, तो एक महिला ने दरवाजा खोला और भगवत गीता इस महिला को बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दी। एक महीने पश्चात ये महिला उस बुक डिस्ट्रीब्यूटर से मिली, रास्ते में दिखा ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर। तो महिला उसको बुलाती है, रुकाती है, बोलती है कि तुमने वो जो किताब दी थी ना, तुमको पता है उस दिन से मेरे पति, वो बेडरिडन थे, बेडरिडन अपने अंतिम दिन उनके बाकी थे, और हर रोज मेरे पति ने वो तुम्हारी दी गई भगवद गीता को पढ़ा, एवरी डे बिफोर ही डाइड, बिफोर ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ, ही वॉज रीडिंग दैट भगवद गीता गिवेन बाय यू टू मी, एंड दैट पर्सन वॉज नन अदर देन चार्ली चैपलिन। प्रभुपाद एक बार एयरप्लेन में चार्ली चैपलिन की मूवी देख रहे थे, तो उनके सर्वेंट बगल में बैठे थे और प्रभुपाद जोर जोर से हंस रहे चार्ली चैपलिन को देख के, और वो सर्वेंट इधर उधर देख रहा है कि कोने से देख रहा है, वो भी मूवी देखता है बीच में। तो पहले वो साइड लॉन्ग ग्लांस डाल रहा था मूवी देखते हुए, हाँ, लेकिन फिर उसने देखा प्रभुपाद तो एकदम चैंटिंग वैंटिंग छोड़ के पूरा फुल एब्जॉर्ब्ड वो प्रभुपाद देख रहे हैं। तो ये मतलब प्रभुपाद को देखा, अब वो तो प्रभुपाद ने पूरी वो चार्ली चैपलिन की मूवी के बाद प्रभुपाद ने उसको कृष्णा कॉन्शियस परपोट दिया। अच्छा, इससे आप कोई इंस्पिरेशन मत लेना। कि कल के हम भी जाएंगे, इंस्पिरेशन लेकर आएंगे कि कैसे ये अलग अलग खान्स की रासलीला होती है उसको देखकर। तो प्रभुपाद ने कहा कि दिस पर्सन चार्ली चैपलिन हैज बीन गिफ्टेड बाय कृष्णा बाय सच सेंस ऑफ ह्यूमर, विदाउट स्पीकिंग, विदाउट एनी डायलॉग, ही कैन मेक पीपल लाफ लाइक एनीथिंग। चार्ली चैपलिन के नाम से मुझे एक याद आया कि कौन सी जगह, एक चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट था, मॉन्टेसरी जगह थी वहां पर। तो वहां पर चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट है ना, वो इतनी सी मूंछ उसकी, उसका वो कैप हैट। तो उस चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट में चार्ली चैपलिन खुद भी गया और चार्ली चैपलिन सेकंड आया. द ओरिजिनल चार्ली चैपलिन ही स्टूड सेकंड, विच मीन्स दिस इज अगेन द स्पेशलिटी ऑफ कलयुग. द फेक पीपल दे ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट. ओरिजिनल चार्ली चैपलिन सेकंड पोजीशन पे आया, बाद में उसने रिवील किया अरे मैं हूं चार्ली चैपलिन. लुक अलाइक आप जानते हैं ना, लुक अलाइक. तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ली चैपलिन के साथ हुआ. एक हमारे बॉम्बे पुणा जो एक्सप्रेस हाईवे है उस पर वो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो ये डिवोटी पेट्रोल पंप्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो बॉम्बे पुणा एक्सप्रेस हाईवे पे पेट्रोल पंप है. तो एक कार पेट्रोल पंप पर आई तो ये गए उसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो इस व्यक्ति ने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड. जनरल एक पेटेंट लोगों का आंसर क्या होता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ऐसे एक बार मैं जुहू में कर रहा था बुक डिस्ट्रीब्यूट डोर टू डोर. तो वहां पर डोरबेल मैंने रिंग करी तो एक आदमी वो 3/4 में और स्लीवलेस पहना हुआ और ऐसे ब्लेरिंग कुछ रॉक म्यूजिक अंदर चल रहा था आया, व्हाट डू यू वांट ऐसे करके मेरे को चिल्ला के. तो अभी इतने वो तैश में था तो मैंने उसको फिर थोड़े से नम्र भाव में, सर आई हैव सम स्पिरिचुअल बुक्स. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, गेट आउट, चिल्लाया ऐसे. तो जब उसने ये कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो मैंने कहा देयरफॉर आई हैव कम टू यू. इफ यू वुड हैव बीन इंटरेस्टेड यू वुड हैव कम टू मी. तुरंत उसका वॉल्यूम कम हो गया, अंदर का भी वॉल्यूम कम करके आया वो. और उसने 3 स्मॉल बुक्स ली प्रभुपाद की. तो ऐसे ही ये बॉम्बे पुणा एक्सप्रेस हाईवे पे बुक डिस्ट्रीब्यूटर, तो जैसे ही इन्होंने बुक दिखाई और इसने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो इसने जो रिप्लाई किया, इसने कहा इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ योर इंटरेस्ट, इट इज द क्वेश्चन ऑफ योर नीड. और बहुत सुंदर तरीके से बताया, जस्ट लाइक यू आर ऑन योर वे टू पुणा, you interrupted your way and you took a detour. Why? Because your vehicle, it was not that your vehicle was interested in petrol, your vehicle needs petrol. So just like your journey was interjected because of the need, similarly there is this journey of life wherein you have to intercept to take care of the need. So I am giving this book, and by the way, don't think that I am some salesman. I am a software engineer and I am working for KPMG. ये व्यक्ति ये इतना impress हो गया क्योंकि ये खुद कुछ साल पहले KPMG में था. तो इतना इंप्रेस हो गया, इसने जितनी किताबें थी वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसने सारी किताबें ले ली. तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु उन्होंने एक प्रचारक की भूमिका जो निभाई. नेक्स्ट, एक तो क्या है बुक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का किया है उन्हें, कि रामदास विप्र को जाकर जब ओरिजिनल उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट कुंभ पुराण का दिखाया तो रामदास विप्र वो भाव विभोर अवस्था में चला गया और रामदास विप्र चिल्लाते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि वही त्रेता युग के जो राम जिनके विषय में मैं पढ़ता हूं हर रोज, आप वही हो. यू आर द सेम लॉर्ड राम, अदरवाइज नोबडी कुड हैव डन दिस एंड कन्विंस्ड मी. एंड देन ही मेड अ बिग फीस्ट फॉर चैतन्य महाप्रभु. अच्छा, आप ये मत समझो कि चैतन्य महाप्रभु फीस्ट के लिए वो वापस मदुरई गए थे. तो So here I will conclude with this point. Khil gaye chehre. The glories of preaching. So I compare the life of a sadhak to this pranayam called anulom vilom. Jante na? Anulom vilom. So in anulom vilom, you first breathe and you hold the oxygen in your lungs, and then you exhale and then you release. So sadhaka's life is like doing anulom vilom. Anulom, which means inhaling, is like what we are doing right now, nourishing ourselves, filling ourselves with Krishna conscious nectar. It's like filling our lungs with oxygen. Now imagine you are doing anulom vilom and you don't exhale. Khali inhale karke ruk gaye. You'll die. So to the extent you have inhaled, to that extent you have to exhale. And what is exhalation? Preaching. Inhalation is nourishing ourselves with Krishna conscious Shravan Kirtan nectar, and exhalation is giving it to others. That is what Chaitanya Mahaprabhu taught in his South India Yatra. He was relishing Krishna Kirtan and he was giving Krishna Kirtan. He was inhaling, exhaling. Anulom, vilom. Both have to be balanced properly. If you actually want the effect, actual effect of that pranayama, the balance of inhalation and exhalation should be perfect. That's called the balance of preaching, and for that preaching we have to nourish ourselves. तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग इस यात्रा में अब बस आखिरी दिन है, कल का परसों दो दिन है, उसके पश्चात हम लोग फिर अपने अपने जो जो क्षेत्रों में जाएंगे. कौन कौन से आप लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं? हाँ, नाशिक, डिंडोरी, चालीसगांव, लासलगांव, हाँ, साईखेड़ा. तो इसलिए हमें इसका बैलेंस रखना है. सो दिस इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु इज टीचिंग अस when he visited Rameshwaram. So the connection of Rameshwaram with Madurai, what we learned tonight, connection of Rameshwaram with Madurai, which we'll be going day after, and connection of Rameshwaram with Nasik. So this is the perfect triangle. We are here in Rameshwaram, and with these memories of Lord Chaitanya, getting inspired by the absorption of Ramdas Vipra in hearing Ramayana and Chaitanya Mahaprabhu going out of his way to preach, this is the inspiration which we should get while we are here in Sri Rameshwaram Dham. Bolo Shriman Gauranga Mahaprabhu ki Jai! Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrind ki jai, Nitai Gaur Premanandi. Thank you all very much. Hare Krishna. ये टाइम पे खत्म कर रही। Thank you for your wonderful inspiration and your enthusiasm. I hope that this kind of enthusiasm and inspiration you maintain it until our next IYS Yatra. So now some very important announcements Krishnadhan Prabhu will make for all of you. Thank you all once again. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.